नावशिष्टं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपम् रूपं तस्याग्रजपुरीपुरीं मातुरीं दृष्टवाटीं राधाकुण्डं गिरिवर्महोराधिकामाधवासं प्राप्तो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुं तं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महापदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकार्तर्याजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञायराधितं सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम गुरु पार्वत नित्य लीला प्रोष्टम विष्णु पाद शिष्म भक्ति प्रज्ञान के सौ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कर्णों में कोटि कोटि श्रद्धा दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अपने सारी गुरु परंपरा प्रिय बेटों और बेटियों मैं ममता और भक्ति के तारतम्य से भक्तों का तारतम्य जो बतलाया है उसमें ज्ञानी भक्त भीष्म प्रहलाद इत्यादि को सरस सनंदन सनत कुमार को बतलाया शुद्ध भक्त अम्बरीश को बनाया प्रेमी भक्त हनुमान जी को बताया और उससे अधिक प्रेम पर भक्त पांडवों को बताया और प्रेमातुर बताया उद्धव इत्यादि ये क्रमशः यहां तक तो यानी अब उसके ऊपर में नित्य सिद्ध भक्तों का कृष्ण के परिक्रमों का वो भक्तों के कोटि में नहीं नित्य भगवान के परिकर है। यशोदा मैया नंद बाबा श्रीदाम सुवल इत्यादि जितने ब्रह्मांडों में कृष्ण का अवतार जितने रूपों में होता है ये लोग भी उतने ही रूप में आते हैं। करोड़ों ब्रह्मांड है तो करोड़ों कृष्ण ब्रह्मांड एक एक ब्रह्मांड में अवतरण होते उसमें जसोदा जी करोड़ों एक एक ब्रह्मांड में नंद बाबा ऐसा समझो कम नहीं लीला अपरंपार है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई आकाश में हवा का कण यदि कोई गिन ले और पृथ्वी की बालू का कण कोई भले ही गिन ले किंतु भगवान की लीलाओं का अनंत लीलाओं का कोई भी पार मैं नहीं पार पा सकता। इसलिए सर्व सहज उपाय है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। शरणागत बन जाओ भगवान तो मिलेंगे नहीं जे जहां पर आप शरणागति हो गए भगवान के प्रतिनिधि रूप में योग्य क्वालिफाइड अनुभवी सदगुरु यदि हैं भक्त लोग हैं वो जो आचार्य के रूप में आते उनके प्रति शरणागति करने से सहज ही में उनकी कृपा हम लाभ कर सकते हैं। तो अब तक तो हमने प्रेमातुर भक्त उद्धव को भी हमने दिखलाया, अब हम तो उससे आगे बढ़ रहे हैं। सुबल सिदाम, सिदाम राधा जी के भैया, दाम सिदाम सुदाम वसुदाम स्त्रो कृष्ण लवंग अर्जुन उज्ज्वल ओकिल भृंग बसंत सुबल सखा मधुमंगल इत्यादि, ये सब कितने कृष्ण के करोड़ों सखाए हैं। एक एक से कृष्ण के बिना ये एक पल भी नहीं रह सकते, सब समय कृष्ण के साथ रहते हैं। यदि कभी कुंजों में कहीं छिप गए कृष्ण एक मिनट के लिए, प्राण धारण नहीं कर सकते, खोजने ढूंढने लगते हैं, और यदि उसमें से प्रकट हो गए, अहम पूर्वम अहम पूर्वम, मैं पहले कृष्ण को स्पर्श करूं, दौड़ करके सभी एक साथ में दौड़ते हैं। कृष्ण भी ऐसे हैं, जब कभी वन्य भोजन करते हैं, जैसे भांडीर वन में भांडी बस्त के नीचे एक मील तक जिसकी शाखाएं चारों तरफ जमुना के उस पार तक पहुंच गई हैं, बीच में जमुना बहती है, एक तरफ पेड़ है, दूसरी तरफ उनकी डाली चली गई है, इतना लंबा, उसमें इसमें तभी 500 आदमी होंगे या 400-500, और वहां पर करोड़ों सखाओं के साथ में बैठे हैं, बीच में कृष्ण बैठे हैं, चारों तरफ में सखा लोग बैठे हैं, और प्रत्येक सखा पीछे वाला भी ये देखता है कि कृष्ण मेरे साथ में बैठ करके हमारे थाल से भोजन कर रहे हैं, पत्ते से भोजन कर रहे हैं। कृष्ण करोड़ों सखा बन जाते हैं और एक एक सखा के साथ में बैठ जाते हैं, ऐसी ऐसी सब लीलाएं करते हैं। तो ये सखा लोग हैं, कैसी सखा, यदि कृष्ण अभी पलंग पर सो रहे हो और गैया निकल गई डकर रही है कृष्ण के लिए, बछड़ों को दूध तक नहीं पिलाती, उस समय श्रीदाम इत्यादि सखा लोग दौड़ करके आएंगे, अरे सारे अभी तक सो रहा है, सो रहो और पकड़ करके उठा देंगे, हनुमान करेंगे ना पांडव लोग करेंगे ना उद्धव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण का सखा बनना सहज नहीं है, ये कृष्ण के ही समान है ये, इसलिए सखाओं का प्रेम अद्भुत है। सुखदेव गोस्वामी ने सखाओं का, उनकी लीला और गुणों का वर्णन किया है। मैया यशोदा नंद बाबा का तो कहना क्या, किंतु किसी किसी स्थिति में नंद बाबा की अपेक्षा यशोदा मैया का स्नेह अधिक बढ़ जाता है। नंद बाबा भी प्यार करते हैं, यशोदा जी कृष्ण का कान मीठ देगी तो मुंह करते हुए नंद बाबा के यहां नहीं जाएंगे, मैया के गोद में ही बैठेंगे, उनको कहते जाओ और नहीं जाएंगे। किसी समय में आसपास की माता स्थानीय ग्वाली ने गोपियां यशोदा मैया से उलाहना दे रही है, तेरा लाल और बड़ा नटखट है, हम लोग तंग आ गए हैं, घर में जाता है मक्खन चुरा लेता है, अपने खाता है, सखाओं को खिलाता है और बंदरों को भी खिलाता है। पकड़ लेती है तो मुस्कुरा करके कहता है जैसे भैया, अरे तो मैंने समझा था जी तू मेरी भैया है, तू बेटा बेटा कहती है और तुम्हारे घर में मक्खन खाया तो तुम चोर हमको कह करके पकड़ रही है। कभी किसी समय में एक वाली ने रंगे हाथ उनको पकड़ लिया मक्खन चुराते हुए, कहे तुमने मक्खन क्यों चुराया? उन्होंने कहा जी हमारे घर में मक्खन की कमी है। कोई कमी तो नहीं भाई, इधर उधर क्या देखते हो, क्या देखते हो, हमारे घर में मक्खन की कमी थोड़े, 9 लाख गाय हैं, मैं मक्खन नहीं चुरा रहा था, हमारा एक बछड़ा इधर भटकता हुआ आ गया और इस मटके में वो कूद गया, मैं तो उस बछड़े को ढूंढ रहा हूं। कहे तुम्हारा बछड़ा इधर आ गया, इस छोटी सी मटकी में कैसे कूद गया? तो देखो हाथ डाल करके और निकाला, वो था नंद बाबा ने खेलने के लिए खिलौना एक बछड़ा ला दिया था। जब हंसने लगी तो हाथ छुड़ा करके भाग गया। कितनी तरह की लीलाएं करता है। सखाओं के साथ में जाएगा, जिसके घर की मैया है, दधी मंथन कर रही है, कहे बछड़ा खोल दो और जाकर के मैया का से दूध पी रहा है और वो गई घर में, सभी उसका बेटा भी सभी लोग मिलकर के घर में घुस करके। गोपियां ये देखती हैं कि हमारे घरों में इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करता है, मन को मुक्त कर देता है। यशोदा जी को ये सौभाग्य नहीं है देखने का, ये उसकी ऐसी लीलाओं को देखें। तपस्या करती है, दिन भर देखती रहती है कि और लल्ला आएगा उनके घर में मक्खन चुराने के लिए। मक्खन चुराना माने क्या? उनके दिल को चुराना है। तो इस तरह से वो लीलाएं करता है। यशोदा मैया कुछ रुष्ट हुई और बोली, हमारे घर का मक्खन मीठा नहीं होता, इसलिए ये चुराता है दूसरा उनके घरों में। वो ग्वालिनी तो अपने आप दधि मंथन करती है, हमारे यहां आती हैं सब दूसरी गोपियां, नौकरानियां, वहां नौकरालिनियां तो है ही नहीं है ब्रज में, तो सहेलियां आती हैं वो मनती हैं, अच्छी तरह से दूध दही को नहीं जमाती, लाल नहीं हो जाता, उस दही में हाथ डालो तो चारों तरफ में मक्खन मिला हुआ, तो ऐसा नहीं करती, इसलिए मैं खुद ही सबको आज छुट्टी दे दूंगी, आज दिवाली है और दिवाली के दिन मैं सबको छुट्टी दे देती हूँ, वो सब अपने अपने घर में जाएं और आज मैं खुद दही जमाऊं। रोहिणी और बलदेव दोनों भी चले गए, उपानंद जी के घर उन्होंने निमंत्रण किया, आज दिवाली है तुम हमारे घर आना, वो भी चले गए। बस अपने हाथों से दही जमाई, पद्म गंधा ऐसी गायें हैं, पद्म गंधा और सब गायें हैं उनकी, उन गायों का 8 गायें हैं विशेष करके, जिनको हरी हरी मैदान में पास ही रखते हैं वो चरने के लिए कम जाती है और उनका दूध भी पद्म के समान, कमल के समान सुगंधित होता है। और दही जमाया और सवेरे ही 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कृष्ण लीलाओं का स्मरण करती हुई और दधि मंथन कर दे रही।
कृष्ण जितने सुंदर हैं उनकी मैया सुंदर नहीं रहने से बेटा इतना सुंदर होगा नहीं होगा। इसलिए यशोदा मैया कैसी सुंदरी है विश्व की सुंदरियों में एक से, कमर पतली वस्त्र छल चौड़ा सुरीली ऐसा जैसे कृष्ण का ये स्वर आया कहां मैया से आया बड़े सुरीले कंठ से। कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए बाल लीलाओं का स्मरण करती हुई गोविंद दामो ओ धर्माधवेती गोविंद दामो धर्माधवेती गोविंद दामो का स्मरण करती हुई एकदम प्रेम में डूबी हुई है, पुलक रोमांच सब हो रहा है, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। जो लीला का चिंतन का ये लक्षण, भगवान को यदि पुकारना है तो कैसे पुकारना है, गदगद होकर पुलक रोमांच होकर इस रूप में भगवान को पुकारना है। मैया यशोदा जी है और गोपियां क्या करती हैं, बच्चों को स्नान करती हैं, कराती हैं। गोविंद दामो धर्माधवेती गोविंद दामो उधर लिप रही है और तन्मय होकर के क्या करे गोविंद रामो गोविंद रामो। बच्चा सो नहीं रहा है, सुला रही है, पलंग पर थपथपी दे रही है, लोरी सुनाने के बदले में लोरी सुना रही है गोविंद रामो। महाप्रभु जी के जीवन में ऐसा देखा गया, कोई भी काम करता हरे कृष्ण, कोई भी काम हो हरे कृष्ण। तो इसी प्रकार से ये गोविंद दामोदर से कहा, आज यशोदा मैया प्रेम में तन्मय होकर के कृष्ण को पलंग पर छोड़ दिया है, सो रहे हैं अभी ब्रह्म मुहूर्त में कृष्ण सो रहे हैं और इधर यशोदा मैया मंथन कर रहे हैं। उनके हाथों की चूड़ियां सोने की बालाएं मानो वो करताल की जैसे झंकृत हो रही है, वो और स्वर में स्वर मिल रहा है। और मक्खन जो ऐसे जो करती है ना, ऐसे मंथन नहीं, थोड़ा नहीं, कितने गायों का दूध, और उसको खंभे में रस्सी लगा दिया और दही में, और इस प्रकार से झीना वस्त्र रेशमी, कौन सा ऐसा रेशमी वस्त्र जो अंगुलियों के नखों में उनका पूरा साड़ी आ जाए, पूरी साड़ी आ जाए, ऐसे रेशमी वस्त्र भारतवर्ष में उस समय में बनते थे। झीनी कपड़ा पहनी है, पसीने के बूंदे कुछ आ गए हैं, वो भी चमक रहे हैं अत्यंत सुशोभित। और जब दधि मंथन से जो शब्द निकलता है वो मानो मृदंग का पिछला भाग और अगला धिक तान माने धिक्कार है उनको जो कृष्ण भजन नहीं करते, इसलिए धिक तान किनको धिक्कार है, धिक उनको जो कि इतना सहज ऐसे हाथ जोड़ करके प्रणाम करने की भी जरूरत नहीं, स्मरण करने से ही हो जाए, उनका नाम कर ले एक बार नमस्कार भी नहीं कर सकते, उनको धिक्कार है, उनको धिक्कार है। मन इस तरह से बड़ी सुरली कंठों से वो गा रही है। इतने में कृष्ण की नींद खुल गई, टटोला आंख बंद की है, टटोला मैया मैया मैया, मैया तो है नहीं, देखा वो तो दधि मंथन बहुत दूर से कर रहे, अभी छोटे बच्चे हैं, ढाई वर्ष पौने तीन वर्ष के हैं, कितने
वर्ष
के अभी नंगे नंगे हैं, सो रहे हैं, काजल लगा मैया ने पूरा काजल लंबा लगा दिया, ऐसे तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, कमल के पत्तों जैसी, किंतु उसमें काजल लगा दिया। अब वो उन बच्चों का अस्त्र है रोना, कोई काम नहीं होगा तो अस्त्र चलाएंगे, अचूक बाण रोना, बस रोने लगे। पहले तो झूठ मूठ को रोने लगे, और सचमुच में मैया नहीं आए तो मुंह करते हुए हथेलियों से और आंख के आंसू थोड़े से आए मैया के लिए, और वो पूरा रंग गया, श्याम पर और श्याम चढ़ गया, नीम के पेड़ के ऊपर में करेले का लता चढ़ गया, और भी एक तो काले हैं ये और काले हो गए। बड़ी मुश्किल से उतरना चाहते हैं, बड़ी मुश्किल से उतरे, गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं कानी उंगली पर 7 दिन तक, और पलंग से नीचे नहीं उतर पाते, पृथ्वी को लेकर के दौड़ जाते हैं, कौन लीला में मत्स्य बड़ा रूप में, अपने दांतों पर कमल का फूल एक रख दिया जाए तो वैसे लेकर के दौड़ सकते हैं और वहां से उतर नहीं सकते, ये भगवान की लीला है। एक चीज को समझिए, भगवान जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं न सचमुच में ऐसा कर रहे, जो रो रहे हैं ये सचमुच रो रहे हैं न अभिनय कर रहे हैं, अभिनय नहीं करते, उनकी एक जोग माया शक्ति है, उनकी बिना जोग माया के जोग माया उपासिता, जोग माया की वजह से सब कुछ जानते हैं, ऐसा कोई चीज नहीं जो नहीं जानते, किंतु भक्तों के परवश होकर के भक्तों को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, जोग माया का आश्रय लेकर करते हैं, और जोग माया ऐसी करते हैं जो माने वो भगवान है ही नहीं है, साधारण एक शिशु है ऐसा समझते हैं, ये भगवान की लीला है। इसको लीलाओं को दो भागों में बांटा जाता है, एक ऐश्वर्यमयी एक माधुर्यमयी, माधुर्यमयी पहले ऐश्वर्यमयी जो अलौकिक है, जो जिसको मनुष्य नहीं कर सकता है उसको अलौकिक ऐश्वर्यमयी लीला कर सकते हैं, कोई भी आदमी व्यक्ति गोवर्धन को अपने हाथों से नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता, विश्व ब्रह्मांड को नहीं उठा सकता, ये अलौकिक लीलाएं हैं, ऐश्वर्यमयी लीलाएं, किंतु भगवान भक्तों के लिए माधुर्यमयी लीला, ऐश्वर्य हो और न हो इससे कोई मतलब नहीं, ऐश्वर्य हो चाहे ना अलौकिक हो ना, किंतु छोटे बालक होकर कहीं पुतना का वध किया, गोवर्धन का धारण किया, अभी उस समय उनकी उम्र 7 वर्ष की, गोवर्धन को धारण कर लिया, और ये अगासुर बकासुर को मारते हैं पुतना को, अलौकिक लीला है। किंतु लौकिक लीला होने पर भी वही छोटे रूप से ही ऐसे करते हैं ये किसी को मालूम नहीं। एक दिन एक गाड़ी में एक राक्षस प्रवेश कर गया,
शक्तासुर,
किंतु उसके गाड़ी में कुछ ऐसे व्याप्त हो गया जो और लोग तो देखे नहीं, और कृष्ण कर रहे थे क्या, वो भार से दबाना चाहता था, और कृष्ण ऐसे खेलते 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 पैर से ठोकर मार दिया और उलट करके और वो मर गया। ये सब माधुर्य लीलाएं भगवान की है, तो ये जोग माया के प्रभाव से करते हैं। तो कृष्ण रो रहे हैं, रो करके किसी प्रकार से पलंग से उतरे और क्रमशः उच्च स्वर में, क्रमशः जब नहीं सुन रही है अब वो तो दधि मंथन का आवाज है और सुरले गान में मत्त हैं और कृष्ण वहां से रो रहे हैं, नहीं सुनाई पड़ा। एकदम निकट पहुंच गए और एक हाथ से दधि मंथन का दंड पकड़ लिया और दूसरे से इनका सी ऐसे पकड़ लिया। देखा जी कौन आया, तो देखा तो नंगा धड़ंगा काजल यहां से चारों तरफ होते हुए, और देखा बेटे को, बेटे को देखते ही वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा और उमड़ने के साथ गोदी में रख दिया, अंचल से ढक दिया, दधि मंथन बंद कर दिया और कृष्ण दूध पीने लगे। कितना समय हुआ, कितना मिनट बोला, तो 30 मिनट होने लगे। अच्छा आ जाइए, आइए आप निकी मंडी। ऐसे तो एक महीने में एक दिन में नहीं होगा।
एक घंटा
नहीं से सुन, हमको डॉक्टर ने कहा है ना बीच बीच में, तो ये 3 मिनट पहले ही बोल दिया, आधा घंटा होना चाहिए।
क्या करना, क्या नाम
है, ऐसे मिलना
क्या,
आप कालना से आए हैं, बंगाली हैं, ठीक है पीछे बात करूंगा, कीर्तन कर दें। अच्छा सुनिए,
Oh, अभी हो तो
अब गोकुल में फिर आइए नंद भवन में कृष्ण को मैया दूध पिलाने लगी। अब यहां पर भाव विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी ये सब भाव मिल जाए। कृष्ण यहां अवलंबन है और माता जी अवलंबन है, प्रेम के आश्रय है यहां पर यशोदा मैया और प्रेम के विषय कृष्ण बाल गोपाल है। दूध जब पिलाने लगी और ऊपर से स्नेह की वर्षा करने लगी, रोमांच पुलक इत्यादि अनुभव संचारी भाव एक समय में ये सब मिलित हुए, चित्त द्रवित हो गया, आंख से आंसुओं की धारा बहने लगी। ये सब भाव विभाव अनुभव और सात्विक इत्यादि ऐसे ये रस होता है जो सदा मैया वात्सल्य रस का एक तरह से आस्वादन कर रही है और कृष्ण विषय अवलंबन होकर के उस रस का आस्वादन कर रहे, दोनों कर रहे हैं। कृष्ण जो आस्वादन कर रहे हैं उनके आस्वादन से कहीं अधिक आस्वादन यशोदा मैया कर रही है। कृष्ण को रोमांच पुलक तो नहीं हो रहा किंतु इनको रोमांच पुलक अश्रु सभी कुछ हो रहे हैं। यशोदा मैया के स्तनों में इतना दूध है कि खीर सागर जो नाम सुनते हैं वो उमड़ जाता है उनके दूध से। और कृष्ण में के भूख में इतनी ललक है जो विश्व ब्रह्मांड को भी अपने उदर में रख ले तो पेट ना भरे। तो दोनों में लग गया विवाह, कृष्ण पी रहे हैं उनका पेट भरने वाला नहीं इतना बड़ा, आज यशोदा मैया के स्तन में इतना दूध जो कृष्ण कितने दिन तक पीते रह जाए वो समाप्त नहीं होने को। और लोग ताकते रह जाते हैं कि कृष्ण कब हमारा स्तन पान करेंगे, इसलिए पासे चूल्ही पर रखा हुआ दूध मानो जीव तत्व है। कृष्ण मेरी कब सेवा ग्रहण करेंगे, उनको तो फुर्सत नहीं है यशोदा मैया के दूध से। इसलिए वो उबल करके वो दूध आग पर गिर रहा था, अब प्राणों को नहीं रखेंगे। यदि कृष्ण की सेवा में नहीं लगा तो इस प्राण की कोई जरूरत नहीं है, जीवन की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी भावना होने पर कृष्ण मिलते हैं। ऐसी भावना होनी चाहिए, कृष्ण की कब सेवा मिले, कब सेवा मिले। दूध मानो जीव, उसमें भी अणु भी जीव है उसमें। सोच रहे हैं इतना अगाध अनंत यशोदा मैया के स्तनों में दूध और कृष्ण की भूख जो विश्व ब्रह्मांड करोड़ों उनके पेट में आ जाने से भी पेट नहीं भरे, तो दूध से पेट नहीं भरेगा तो मैं उनकी सेवा में नहीं लूंगा। किंतु गुरु क्या देखता है, हमको पीछे मिले हमारे सेवकों को भगवान प्रभु आगे मिले। यशोदा मैया उस तत्व की गुरु है प्रेम की वात्सल्य रस की, सोचती हैं कि मैं हमारा दूध से तो छेना नहीं बनेगा, रसगुल्ला नहीं बनेगा, राबड़ी नहीं मिलेगी, मेरे दूध से तो पिएगा किंतु और दिन भर मक्खन कहां से आएगा, राबड़ी कहां से आएगी और सब जो चीजें हैं वो कहां से मिलेगा, इसलिए उसको बचाना जरूरी है। इसलिए भक्तों को पहले सेवा में लगाए, इसलिए यशोदा मैया वो गुरु के रूप में शिष्य को देख रही है, ये जीव उनको पहले हम लगाए। इसलिए कृष्ण को अभी कृष्ण की अब पेट नहीं भरा है, भूख नहीं मिली और कृष्ण को रखना चाहती हैं, रख करके दूध को उबाले कृष्ण उनको पकड़ लिया चारों तरफ से, मुख से पकड़ लिया, बंदर की तरफ में हाथ से पकड़ लिया और इधर पैरों से भी जकड़ लिया। और यशोदा मैया ने एक हाथ से ठहरो बैठो, और कृष्ण की सारी भगवत्ता गुम हो गई और एक हाथ से उनको बैठा दिया वहां और चल पड़ी दूर के लिए। कृष्ण पूतना को जब स्तन पान कर रहे थे तो कितना 10,000 हाथी का बल उसके अंदर में था, बड़ी विद्याएं माया इत्यादि जानती थी। और कृष्ण मुख में उसका स्तन पान करते 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 बीज तो पी गए, उसके प्राणों को भी पीने लगे, विकराल रूप धारण कर लिया। और छोड़ो छोड़ो हाथ से, दोनों हाथों से बहुत जोर से हटा रही है, और कृष्ण छोड़ नहीं गए, छोड़ा नहीं अंत तक जब तक कि प्राण नहीं चूस लिए और उसको धात्री गति नहीं दे दी, तब तक माता की गति दी। ऐसे दयालु हैं। मैया का वेश बना करके आई थी, इसलिए वेश बनाने से इतना, और सचमुच में मैया होती तो क्या करते, क्या देते, क्या देंगे। ब्रह्मा जी स्तव स्तुति में कह रहे हैं, हम आश्चर्य, ये गोपियां जो उनको बड़े ललक के साथ में पुत्र के ज्ञान से बड़े स्नेह से दूध पिलाती हैं, उनको क्या देंगे ये, जब एक मारने वाली प्राण को और आई केवल वेश बनाया माता का उसको दे दिया। इसलिए जो यशोदा मैया कृष्ण को वहां पर बैठ दिया, चल पड़े, जाकर के छींटे दिए, प्यार के छींटे दिए, हम सेवा में लगाएंगे तुम्हें। और फिर जब दूध उबलना हो गया तो मटके को वहां से उतार करके रख दिया और फिर वहां आए। यहां पर एक प्रश्न विचारणीय है, भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति कहते हैं कृष्ण को सुख हो, आनंद हो, कृष्ण के लिए हो। कृष्ण रो रहे हैं और यशोदा मैया उनको अतिरिक्त अवस्था में छोड़ करके चली गई, उनको इतना दूध प्यारा हो गया। दूध प्यारा है कि कृष्ण प्यारे हैं, यह विचारणीय है। इससे तो मालूम होता है दूध प्यारा है, किंतु बात ऐसी नहीं है। दूध किस लिए? कृष्ण के लिए। कृष्ण अबोध है, नहीं समझता है, कृष्ण को अपना लाला समझती हैं, जो अपनी मक्खी अपने आप नहीं भगा सकता, करवट अपने आप नहीं ले सकता, ऐसा बालक समझती हैं। कभी भी उनको प्रभु के रूप में, भगवान के रूप में उन्होंने ग्रहण नहीं किया। तो इस तरह से कृष्ण का की बंसी कृष्ण से प्यारी यशोदा मैया के लिए है। जब कृष्ण मथुरा जाने लगे तो बंसी को रख गए। कृष्ण की झुंगलिया कृष्ण से भी बड़ी प्यारी है। झिंगली समझते हैं आप लोग, कृष्ण जो पहनते हैं कपड़े कुर्ते, यदि कृष्ण उसको गंदा कर दे तो यशोदा मैया क्या करेगी? को, अरे कृष्ण प्यारा है न कि कृष्ण का कपड़ा प्यारा है? देखो ऐसा रखो, कृष्ण का या गुरु का या वैष्णव का जो चीज उनको प्रिय है वो प्रिय चीज हमको होना चाहिए, उसको अधिक प्यार करती हैं। वो नहीं रहने से कृष्ण की रक्षा नहीं होगी, बहुत लंबी सूझ है। इसलिए कृष्ण के जो प्रिय हैं उन प्रियों का आदर, जैसे भक्त लोग हैं कृष्ण के, नारद जी आएंगे ना, यशोदा मैया उनके चरणों की धूली लेगी, अपने तो लेगी और कृष्ण के अंगों में भी देगी, उनके सिर पर रखेगी, उसको अधिक आदर करेगी। कृष्ण से भी अधिक कृष्ण के वस्तुओं का आदर करना यह भक्ति का प्रधान लक्षण है। ऐसा नहीं कि कृष्ण ही को, इसलिए जो सोदा मैया कृष्ण को रुचि छोड़ करके भी गई और उबलते हुए दूध को संतना दी और उसको आग में जलने से बचाया और लौट करके आई, देखा क्या वो तो है नहीं, इस धूर्त ने क्या किया, देखा जी मैया हमको दूध पिलाया और अभी अतृप्त अवस्था में हमें छोड़ करके चली गई, तो ठीक है हम भी दिखला देते हैं। बड़ा क्रोध हुआ किंतु करे क्या, करेंगे दूध से। तो उन्होंने क्या किया, जो मटकी थी उनको कहा जो सबको दधी को एकदम गिरा दे, तो ऊपर से जबकि क्या था तो वो हिली नहीं, ये तो बड़ी भारी है। अच्छा तो शिलापुत्र लिया, शिलापुत्र माने लोढ़ा जानते हैं आप लोग, अब की स्त्रियां नहीं जानती होंगी, लोढ़े से पीसने में बारीक चीजें होती हैं, आजकल मसाला वो पीसा हुआ लेते हैं, उससे यदि सिल पर ले तो कितना आनंद है, उसके समस्त गुण आते हैं। तो वो शिलापुत्र एक लिया, शिलापुत्र माने लोढ़ा, ऊपर में मारने से पूरा दूध नहीं गिरेगा, तई नहीं गिरेगी, और ऊपर में मटकी मोटी होती है नीचे में पतली होती है, ऐसा जान करके नीचे की तरफ में लोढ़े से थोड़ा सा छेद किया और उससे अलग हट गए और उससे जो दधी की धारा निकली पतली चारों तरफ में व्याप्त हो गई। अब तक तो खेल बड़ा अच्छा रहा किंतु अब डर हुआ मैया अभी आएगी और मुझे डंडे देगी मारेगी। अब वो क्या करते, चोर कोई चोरी करता है तो कुछ ना कुछ सुराग छोड़ जाता है, तो ये तो चोर है ब्रह्मा, वो चारों तरफ में दही फैल गई थी उसके ऊपर से होते हुए चले गए एक घर में जिसका एक दरवाजा बाहर की तरफ था एक भीतर की तरफ, उस घर में घुस गए और एक ओखल थी और ओखल उल्टी हुई थी जो कौवे उसमें बीट न कर दें, और उसके ऊपर में खड़े होकर सशंक नेत्र से एक तरफ मैया को देखते हैं एक तरफ में मक्खन मां से निकालते बंदरों को खिला रहे हैं, उसमें सखा लोग नहीं थे बंदर थे, और एक बंधु जुट गए काग, काग भुसुंडी जी है ना भगवान के परम भक्त हैं, और बंदरों को रामलीला में उन्होंने कुछ खिलाया पिलाया नहीं, वन जंगल से अपने आप फल फूल लेकर के किसी प्रकार से जीवन निर्वाह करके प्राणियों की आहुति देते थे, इसलिए उनको उस समय नहीं खिलाया था, इस लीला में उनको खिला रहे हैं, और भुसुंडी के दल को भी कागों को भी जो सदाई में आए लौट करके आई, कहां गया एक सेकंड देर नहीं लगी, पैरों के छाप जो छोड़ करके गए हैं उनको देखा और ये घर में घुसा है, बस एक बेंत की लठिया ले ली, हंसती हुई देखो तो इतना तुरंत, आज तक मैंने इसका ऐसा उपद्रव है आज अब अपने घर में भी ऐसा उपद्रव करने लगा, इसलिए लठिया ले ली और धीरे से दरवाजे के करीब पहुंची। कृष्ण जब उधर में मक्खन की तरफ में देख रहे हैं इतने में झट कपाट के ओट में आकर के खड़ी हो गई, भीतर घुस गई, कृष्ण उधर से ऊपर से ले रहे हैं बंदरों को कौओं को, कौवे सब आ रहे हैं, बंदर उनके हाथ से छीन करके ले रहे हैं। इतने में जसोदा मैया लपकी एकदम पकड़ने वाली थी एक सेकंड के अंदर में, किंतु झट वो कूद करके और राजमार्ग पर दौड़ने लगे। छोटा सा बच्चा, मैया जरा स्थूल काय की थी और दौड़ने का अभ्यास नहीं। अभी ये छोटा सा बच्चा अढ़ाई तीन वर्ष का, बड़े वेग से राजमार्ग पर, सोचा अभी राजमार्ग पर सब ग्वाले इत्यादि होंगे, ससुर स्थानी, इसलिए जसोदा मैया बाहर में नहीं आएगी, इसलिए आज अच्छा मौका है, आज चलो यही दौड़। और वो लौट जाएंगे। जसोदा मैया ने देखा जाए सभी गोचारण करने के लिए, दिवाली मनाने के लिए बाहर में चले, कोई है नहीं, इसलिए निशम कुंड के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। काल जवन, जानते हैं काल जवन, मन के वेग से भी उनको ऋषि महर्षि लोग पवित्र हुए, मन से भी उनको पकड़ नहीं पाते हैं। काल जवन उनको नहीं पकड़ सका, कोई नहीं पकड़ सका। और जसोदा मैया उस बालों को पीछे से कर, अरे देखो 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 देखो, ऐसा अपना हाथ में दे था, ऐसे चलाया, अभी चलाया नहीं, ऐसे किया। कृष्ण बोले मैया मुझे मत मार, मुझे मत मार, क्यों नहीं मार, तुमने ये मटकिया क्यों फोड़ी? मैया मैंने में नहीं फोड़ा, अरे तुम्हारे पैरों में जो मोटे मोटे चांदी के कड़ूले हैं या सोना के कड़ूले हैं, तुम जा रही थी ना दौड़ करके, तो वो तुम्हारे पैर से ठोकर लग गई, वो फूट गया, मैंने नहीं किया। चोर, मैया मुझे चोर मत कहो, हम मैं चोर नहीं हूं, तुम्हारे वंश में कोई चोर होगा, चोर गोत्र के उसमें घोष लोग होते हैं, तो वो कोई होगा। ये बंदरों को मक्खन कौन खिला रहा था? तो जो बंदरों को बनाया, ये झूठ है कि सही है? बंदरों को किसने बनाया? उन्होंने ही। इस तरह से परस्पर परस्पर होने लगी, कहे मैया हमने नहीं किया, ये तो तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ। बहुत सी गोपाल चंपू इत्यादि में बहुत रोचक ढंग से इसका वर्णन है, बहुत वर्णन संक्षेप में मैं बदला रहा। अंत में कालजवन जिसको नहीं पकड़ सका, बड़े बड़े योगी लोग अपने शुद्ध किए हुए मन से भी जो उनको पकड़ नहीं पाते हैं ध्यान में, जसोदा मैया ने पीछे से उनको पकड़ लिया। नमामि ईश्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम जसोदा खलाधामान परामृष्ट मदन ततो नमामि ईश्वर सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम। पीछे से पकड़ लिया, बड़े आश्चर्य की बात है। मैया से डरते हैं, पकड़ लेने के बाद में रोने लग गए। एक हाथ से उनको पकड़ लिया मैया ने और दूसरे हाथ से बेंत लेकर के हाथ से दाहिने हाथ से उनको धमका रहे, ये मारू मारू, और वो पीछे जा रहे, इधर जा रहे, भटक रहे, डर के मारे कांप रहे, रोने लग गए। अब तो गंगा की धारा, यमुना की धारा और बहने लगी। गोपियां कहते हैं ये मैया ऐसा मत करो, अरे परिणत वयस में कुछ अधिक उम्र में ये बड़ी तपस्या से बेटा मिला और इसको तुम ऐसे शासन कर रहे थे, जय भेद जैसा भी तुम लोग बीच में मत आओ, नहीं तो ये बड़ा तुरंत निकलेगा पीछे। इसलिए जब कृष्ण करने लगे ऐसा, रोने लगे जोर से, तो मैया को कुछ दया आई और लटिया फेंक दी, सोचा अभी इसको बांध रही थी, इसको धमका रही थी, कहीं ब्रह्मांड घाट निकट है जमुना, और कहीं वहीं पर जाकर के जमुना में कूद न जाए, या ऐसा कुछ काम न कर दे, कहीं जंगल में ना चला जाए। इसलिए सोचा जी इसको भी बांध करके रख दूं, जैसे कहीं नहीं जाए, और फिर क्रोध शांत हो जाएगा तो फिर इसे स्तन से दूध पिला करके इसको शांत करके कर दूंगी। अभी छोड़ना ठीक नहीं है, अभी दधि मंथन भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए कृष्ण को उदुखल जो सहायता की थी, चोर कृष्ण उसकी सहायता जो करेगा उसको भी दंड देना है, दोनों दंड के। इसलिए चोरी जो करने वाला है उसकी सहायता मत कीजिए, तो दोनों दंडनीय है, एक उदुखल, एक तो है खल, एक है उदुखल उसकी सहायता करने वाला, इसलिए दोनों को दंड देना चाहिए। इसलिए उदुखल को जरा पट कर दिया और उसके बीच में एक रस्सी दे करके और कृष्ण को कमर में बांधना चाहा, और ऐसे बांधा जहां पर कृष्ण का हाथ पीछे न जाए। उदुखल को पहले लपेट करके और फिर कृष्ण को उसके विमुख खड़ा करके और हाथों को पीछा, हाथ पीछे हैं, और उसको खोल ले सके, गांठ दे दी अच्छी तरह से। अभी गांठ नहीं दी, इसकी तैयारी में लगी, अपने केस को बंधन करने के लिए रेशमी के डोरी जो होती है काफी लंबी होती है, जिसमें ओखल को और कृष्ण दोनों को, कृष्ण का की कमर कितनी है, 12 अंगुल भी नहीं, छोटी सी है, ओखल भी वैसी है, इसलिए केश के रेशमी डोरी को लिए करके उसको बांधना चाहा, किंतु बंधी नहीं, 2 अंगुल कम पड़ गई। गोपियों से कहा हमारे घर के गायों को नोने के लिए, नोन मैंने पैरों को बांधने के लिए रोसा है, या बछड़ों को बांधने के लिए, उन रस्सियों को लाओ। उन रस्सियों को लाया, उसमें जोड़ दिया, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, रस्सी लंबी होती होगी, कृष्ण की कमर भी वैसे ही, और 2 अंगुल कम पड़ जाए, 3 अंगुल, 1 अंगुल, ऐसा नहीं, 2 ही अंगुल। सखियों से कहा अरे जाओ अपने घरों से रस्सियों को लाओ। वो अपने घर से सभी हंसने लगी, जसोदा इसके ललाट में बंधन नहीं है तो क्यों व्यर्थ प्रश्न कर रही, मैं आज कल परसों सारा जीवन बिना खाए पिए बांध करके ही रहूंगी, क्या है ये डू आर डाई, डू आर डाई, भजन भी ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं, कृष्ण को पाकर के ही रहेंगे, ये जीवन और मरण का प्रश्न है। खाना पीना ध्रुव ने त्याग दिया ना, ध्रुव सनातन गोस्वामी और हमारे सुखदेव गोस्वामी इत्यादि ने छोड़ दिया ना सब कुछ कृष्ण के लिए। इसी तरह से भगवान का भजन इतना सहज नहीं है जितना हम समझते हैं, और दूसरी तरफ से सहज भी है, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हो तो सहज है। तो क्या कर,
2
अंगुल कम, ये 2 अंगुल कम क्या है, ये 2 अंगुल कम है, बिना कृष्ण की इच्छा के कोई कृष्ण को बांध नहीं सकता, उनकी कृपा होनी चाहिए पहली, और अपना प्रयत्न, यशोदा मां बांधने का प्रयत्न कर रही है, जब तक अपना प्रयत्न किया तब तक नहीं बांध सकी, जब देखा जब मैं इसको एक अपने लाला को छोटे से लाला को बांध नहीं पा रही हूं, तो घर में ठाकुर जी थे सालग्राम भजन नारायण, मैं लोगों गोपियों को क्या मुख दिखलाऊंगी जो मैं अपने लाला को बांध नहीं सकती। उनके शरणागत हुई, जब ही शरणागत हुई कृष्ण की कृपा शक्ति, उनकी शक्तियों में सबसे प्रमुख शक्ति ये बात्सल्य कृपा शक्ति झट आई और कृपया स्वबंधने स्वयं अपने बंधन ले आ गए। किंतु जसोदा जी ने जो ये प्रण किया, मैं बांध कर कहीं रहूंगी खाऊंगी पीऊंगी जो कुछ करूंगी, उस पर साधक को भी अपना साधन इसी प्रकार से कर। जब दोनों होती हैं तब कृष्ण की कृपा शक्ति आती है और वो उनकी प्राप्ति होती है, अन्यथा वो बंधन में नहीं आते। बंधन में नहीं, कंट्रोल में मर गया, वशीभूत होना भगवान भक्तों के वशीभूत इस तरह से होते हैं। इसलिए कृपया तो सबंधन है की कुछ प्रसन्न चाहता है तो बोली डॉक्टर साहब बोलते तो कीर्तन कर दो।
बोलिए
खड़े खड़े हो करके सबको कीर्तन अब तो समय हो गया है, अब कल ही विस्तार से महादेव तो योग अच्छे तो जन कहा तो दो अंगुल बतलाए भक्तों की चेष्टा और भगवान की कृपा। रामानुज संप्रदाय में इसके दो उदाहरण हैं, मर्कट न्याय मर्जात न्याय। बंदर अपनी मैया को पकड़ता है और बंदरी छलांग देती है, बंदरी यदि वो बच्चा गिर जाए तो उसको फिर नहीं लेती, इसलिए बंदर का बच्चा ही पकड़ता है ये साधन। और बिल्ली का बच्चा मेव करता है, वो कहीं नहीं तह इधर उधर जाता, वो अपने मुख से पकड़ करके उसको ले जाती है जहां गया, ये भगवान की कृपा। दोनों चाहिए। महाप्रभु जी से पूछा लोगों ने, जैसे भगवान की कृपा बड़ी है या साधन बड़ा है? उन्होंने कहा एक आदमी कुएं में गिर गया, ऊपर से एक आदमी ने रस्सी फेंकी, जिसको पकड़ लो मैं खींच लू, वो पकड़ता नहीं है। भगवान की कृपा सर्वत्र सब समय है, उसको पकड़ो ये साधन है। इसलिए साधन के साथ साथ में भगवान की कृपा भी होनी चाहिए, दोनों ये दो अंगुल हैं। और कृपा हुई, झट अपने आप बंध गए और उदुखल में उनको बांध दिया। बांधने के बाद में वो चली गई घर के काम में, किंतु मन नहीं लगे उजी की चिंता। और इधर कृष्ण को याद आई जो माया के प्रभाव से, नारद जी ने नलकुबर के पुत्रों को ये अभिशाप या अभिशाप नहीं बर ही दिया है कि जमलार्जुन वृक्ष अर्जुन के दो जौआ वृक्ष थे जो यशोदा मैया के ठीक घर के बाहर ही वो जन्मे थे अभिशंपात से। नारद जी ने अभिशंपात दिया था, ये पीछे बताएंगे, उल्लंघ होकर के उनके सामने ही अस्पराओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे, इसलिए दंड दिया जाए, जाओ वृक्ष हो जाओ निर्लज्ज। तो वो आज हो गया बहुत दिन, इसलिए कृष्ण सोचा जैसे इसको उस अभिशाप से भी मुक्त करें। उन्होंने कहा था जब कृष्ण आएंगे द्वापर युग में तब तुम्हारा उद्धार करें, इसलिए सखाओं को प्रेरणा दी तुम तो पीछे से कोकल को ठेलो और मैं खींचता हूं, किसी प्रकार से ले आए और घर के तक ले आए। इसके बाद में द्वार के पास ही में जमत जो वृक्ष थे उसमें लग गया, कृष्ण उस पार चले गए, वो दुखल दोनों पेड़ों में अटक गया, वो जाए नहीं। और कृष्ण जो रस्सी थे, रस्सी से बंधी हुई थी वो खल, उस पार जाकर के थोड़ा सा जोर लगाया और वो वृक्ष ऐसे सीधे नहीं गिरे, ऐसे गिरे, ऐसे गिरने से बच्चे तो बच गए। और उसमें से देवता निकल करके जन नलकुबर ये कुबेर के पुत्र, और स्तौ स्तुति की, उनकी परिक्रमा की और परिक्रमा करके चले गए। बहुत जोर से शब्द हुआ पेड़ों के उखड़ने से, बिना आंधी के ही उखड़े, चारों तरफ में नंद बाबा दौड़ करके वो गायों के क्या खिड़क में थे, दौड़े वहां से आए। जो सुधा जी ने देखा जी घर में तो है नहीं, कहां गया, अब बिना आंधी के ये कहां से शब्द आया, उस शब्द की तरफ में दौड़ी सब गोपियां हजारों लाखों दौड़ी, सब ब्रज के जितने सखा इत्यादि भी सब बच्चे सहमे हुए थे। और कृष्ण आप इस समय तो रो नहीं रहे थे अब तक, किंतु नंद बाबा को जब आते हुए देखा तो बड़े डकट डकट करके जोर से रब्बा बाबा बाबा रोने लगे। यह क्या हुआ, ये पेड़ कैसे गिरा? तो छोटे छोटे बच्चे से पूछा ये क्या हुआ, बाबा बाबा ये पेड़ से दो देवता निकल करके इसकी परिक्रमा किया और क्या क्या बोल करके तब फिर चले गए। तो उनको विश्वास नहीं हुआ ये क्या, आज यदि वो सीधे गिर गए होते पेड़ तो न जाने क्या होता, ये सब बच्चे कुचल करके मर जाते। ये तो थोड़ा इस तरह से गिरे हैं, आकर के रोते हुए बेटे को अपने गोद में ले लिया और गोद में लेकर के अपने पॉकेट से गुड़ का लड्डू उसमें सौंफ और क्या क्या मसाला दिया हुआ कृष्ण के हाथों में दिया। कृष्ण तो रो रहे हैं, हिचकी मार रहे हैं खूब जोर से, शांति में रो। धीरे 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 बंधन खोला। इस बंधन को खोलने के लिए सब सखाओं ने चेष्टा की, किंतु वात्सल्य रस का बंधन वो लोग नहीं खोल सकते, बलदेव ही नहीं खोल सकते, बलदेव ही नहीं थे। पीछे से आए बोले जी कौन बांधा, आज मैं से देख लूंगा। मधमंगल या श्री राम जी ने कान में कह दिया मैया ने बांधा, मैया का नाम शुद्ध है वो भी। यह वात्सल्य रस तो क्या कर रहा था, भूल जाता
गांठ सखा लोग को नहीं खोल पाए गांठ हैं, वात्सल्य रस की गांठ को
बांस को दूसरे नहीं खोल सके। नंद बाबा आधा है ना, आधा वो है, इसलिए वात्सल्य रस गांठ नंद बाबा ने खोल अमुक्त हो गए। कहते हैं जो बांधा किसने, कान में बोलते हैं जी मैया, और फिर जब खोला किसने, आकर बाबा ने, बाबा बड़े प्रसन्न हुए। और भीतर भीतर जसोदा इतनी क्रूर है, इतनी निष्ठुर है, जीवन में हमने तो कभी देखा नहीं था कि ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए। जसोदा माँ खड़ी है, जरा दूर निकट आने का आसास नहीं, आज यदि मर गया होता तो क्या होता। और कृष्ण रो रहा है, हमने तो इस उद्देश्य से बांधा नहीं था, ये क्या होने को क्या हो गया, ले डर के मारे नहीं आ रहे। नंद बाबा ने धीरे से क्रोध तो किया कि तो कुछ कहा, हाथ उठाया मारू तुम्हारी मैया को, हाथ पकड़ लिया कृष्ण ने। और फिर नंद बाबा ने दोनों बेटों को अपनी गोदी में ले लिए, कंधे पर चढ़ा लिया या गोदी में ले लिए, और वहां ब्रह्मांड घाट में स्नान किया। तब तक बहुत समय हो चुका है, घर आए रसोई बनी नहीं कुछ नहीं, गायों का धारुष्ण, कृष्ण को धारुष्ण माने समझते हैं ना, गाय खड़ी है और दूध करके मुख में ही दूध रहे और कृष्ण पी रहे हैं, मिश्री उनको दे रहे हैं हाथ में, इस तरह से पेट भर उनको खिला दिया। और फिर राजभवन में पहुंचे, करते 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 शाम हो गई, रसोई नहीं बनी और सभी लोग बड़े दुखी हैं। जो सोदा मैया काठ की मूर्ति हो गई है, आज हमने जो कृत्य किया, आज यदि कुछ हो गया होता तो क्या होता, रो भी नहीं रही है, सुख गया रोना थी। इधर नंद बाबा बैठे हैं कृष्ण और बलदेव को लेकर के, शाम हो गई और रात होने को उन्होंने उपानंद की पत्नी रोहिणी मैया और बूढ़ी बूढ़ी जो स्त्रियां थी वो गोपियां वहां पर पहुंची। अरे कृष्ण तुम भैया मैया रो रही है, चलो नहीं जाऊंगा, सोएगा कहां बाबा के साथ, खेलेगा किसके साथ, दाऊ भैया के साथ, किस तरह से जाने को राजी हो। तो उपानंद की पत्नी आरोही मैया कहती हैं यदि ऐसा हो जाए अर्थात यदि वो मर जाए
और कृष्ण से अनहार नहीं हुआ, बड़े जकल टकल के रो दिया और हाथ फैला दिया, मैया मैया मैया। और उपानंद की पत्नी ने उनको ले लिया, नंद बाबा भी रोने लगे, कृष्ण रोने लगे, बलदेव सब लोग रोने लगे, जसोदा मैया तो वहां पर रो नहीं पा रही थी। अब ये लेकर के उनकी गोदी में जब बैठा दिया तब अब ढकर ढकर के अब रोने लग गए, इलाज कर सारी गोकुल की नगरिया सभी लोग रोने लगे, विरह में सभी मत हो गए। ये बात चल ऐसी ऐसी कृष्ण की लीलाएं होती है। आज यही पर समाप्त करता हूं। क्या मिलेगा फिर रहने तो समय हो गया है अभी, ये सब
कृष्ण जन्मोत्सव।
हाँ तुम ये बोले दो
अभी कृष्ण जन्मोत्सव को ये कर दी आगे बढ़ा,
तुम बोले दो
अब कृष्ण जन्मोत्सव कर दिया।
बोले दो तुम
सेस कर डरपासों ने कृष्ण जन्मोत्सव
से कहा हमारे घर के गायों को नोने के लिए, नोन माने पैरों को बांधने के लिए रखा है, या बछड़ों को बांधने के लिए, उन रस्सियों को लाओ। उन रस्सियों को लाया, उसमें जोड़ दिया, एक जोड़ा दो जोड़ा तीन जोड़ा चार जोड़ा, रस्सी लंबी होती होगी, कृष्ण की कमर भी वैसे ही, और दो अंगुल कम पड़ जाए, तीन अंगुल एक अंगुल ऐसा नहीं, दो ही अंगुल कम पड़े। सखियों से कहा अरे जाओ अपने घरों से रस्सियों को लाओ। वो अपने घर से सभी हंसने लगी, जसोदा इसके ललाट में बंधन नहीं है तो क्यों व्यर्थ प्रश्न कर दे, मैं आज कल परसों सारा जीवन बिना खाए पिए बांध करके नहीं रहूंगी। क्या है ये डू आर डाई, डू आर डाई
करेंगे या मरेंगे,
भजन भी ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं, कृष्ण को पाकर के ही रहेंगे, ये जीवन और मरण का प्रश्न है। खाना पीना ध्रुव ने त्याग दिया ना, ध्रुव सनातन गोस्वामी और हमारे सुखदेव गोस्वामी इत्यादि ने छोड़ दिया ना सब कुछ कृष्ण के लिए। इसी तरह से भगवान का भजन इतना सहज नहीं है जितना हम समझते हैं, और दूसरी तरफ से सहज भी है, गुरु वैष्णव के अनुगत में हो तो सहज है। तो क्या
कारण
दो अंगुल पड़ ये दो अंगुल कम क्या है, ये दो अंगुल कम है बिना कृष्ण की इच्छा के कोई कृष्ण को बांध नहीं सकता, उनकी कृपा होनी चाहिए पहली, और अपना प्रयत्न जसोदा मां बांधने का प्रयत्न कर रही है, जब तक अपना प्रयत्न किया तब तक नहीं बांध सकी, जब देखा कि मैं इसको एक अपने लाला को छोटे से लाला को बांध नहीं पा रही हूं, तो घर में ठाकुर जी थे सालक राम भजन नारायण, मैं लोगों गोपियों को क्या मुख दिखलाऊंगी जो मैं अपने लाला को बांध नहीं सकती। उनके शरणागत हुई, जब ही शरणागत हुई कृष्ण की कृपा शक्ति, उनकी शक्तियों में सबसे प्रमुख शक्ति ये वात्सल्य कृपा शक्ति झट आई, और कृपया सी स्वबंधने स्वयं अपने बंधन जा। किंतु जसोदा जी ने जो ये प्रण किया मैं बांध करके ही रहूंगी खाऊंगी पीऊंगी जो कुछ करूंगी, उस पर साधक को भी अपना साधन इसी प्रकार से कहा। जब दोनों होती हैं तब कृष्ण की कृपा शक्ति आती है और वो उनकी प्राप्ति होती है, अन्यथा वो बंधन में नहीं आती, बंधन में नहीं कंट्रोल में, कंट्रोल में मर गया वशीभूत होना, भगवान भक्तों के वशीभूत इस तरह से होते हैं। इसलिए कृपया सी तो संबंध है कि कुछ
প্রসন্নটা তো একটু বলি না, মাঝখানেটা কীর্তন কর। কৃষ্ণদা ডাক্তার সাহেব বলছে একটু কীর্তন কর।
বলিয়ে শ্রীমতী হরি লাল কী,
জরে খড়ে খড়ে হো করকে সবকো কীর্তন কর।
জয় জয় শ্রী মাতে হামারে ব্রজ কে রখবাজে কধৈয়া রাধিকারানি, হামারে ব্রজ কে রখবাজে
Yeah.
কাল ঘি
দো
অঙ্গুল বদলা ভক্ত কি চেষ্টা আর ভগবান কি কৃপা। रामानुज संप्रदाय में इसके दो उदाहरण है, मरकट न्याय मरजात न्याय। बंदर अपनी मैया को पकड़ता है और बंदरी छलांग देती है, बंदरी यदि वो बच्चा गिर जाए तो उसको फिर नहीं लेती, इसलिए बंदर का बच्चा ही पकड़ता है ये साधन। और बिल्ली का बच्चा मेव मेव करता है, वो कहीं नहीं था इधर उधर जाता, वो अपने मुख से पकड़ करके उसको ले जाती है जहां गया, ये भगवान की कृपा। दोनों चाहिए। महाप्रभु जी से पूछा लोगों ने, ये भगवान की कृपा बड़ी है या साधन बड़ा है? उन्होंने कहा एक आदमी कुएं में गिर गया, ऊपर से एक आदमी ने रस्सी फेंकी, जिसको पकड़ लो मैं खींच लू, वो पकड़ता नहीं है। भगवान की कृपा सर्वत्र सब समय है, उसको पकड़ो, ये साधन है। इसलिए साधन के साथ साथ में भगवान की कृपा भी होनी चाहिए, दोनों, ये दो दो अंगूल हैं। और कृपा हुई झट अपने आप बंध गए और उदुखल में उनको बांध दिया। बांधने के बाद में वो चली गई घर के काम में, किंतु मन नहीं लगे उजी की चिंता। और इधर कृष्ण को याद आई जो माया के प्रभाव से, नारद जी ने नकुवर के पुत्रों को ये अभिशाप दिया, अभिशाप नहीं बर ही दिया है कि जम जमलार्जुन वृक्ष, अर्जुन के दो जौआ वृक्ष थे जो यशोदा मैया के ठीक घर के बाहर ही वो जन्मे थे अभिशंपात से। नारद जी ने अभिशंपात दिया था, ये पीछे बताएंगे, उल्लंघ हो करके उनके सामने ही अस्पताओं के साथ में पीड़ा कर रहे थे, इसलिए दंड दिया जाए, जाओ वृक्ष हो जाओ निर्लज्ज। तो वो आज हो गया बहुत दिन, इसलिए कृष्ण सोचा जैसे इसको कुछ अभिशाप से भी मुक्त करें। उन्होंने कहा था जब कृष्ण आएंगे द्वापर युग में तब तुम्हारा उद्धार करें। इसलिए सखाओं को प्रेरणा दी, तुम पीछे से ओखल को ठेलो और मैं खींचता हूं, किसी प्रकार से ले आए और घर के तक ले आए। इसके बाद में द्वार के पास ही में जमत जो वृक्ष थे उसमें लग गया, कृष्ण उस पार चले गए, वो दुखल दोनों पेड़ों में अटक गया, वो जाए नहीं। और कृष्ण जो रस्सी थे, रस्सी से बंधी हुई थी उखल, उस पार जाकर के थोड़ा सा जोर लगाया और वो वृक्ष ऐसे सीधे नहीं गिरे, ऐसे गिरे, ऐसे गिरने से बच्चे तो बच गए। और उसमें से देवता निकल करके जन नलकुबर ये कुबेर के पुत्र, और स्तौल स्तुति की, उनकी परिक्रमा की और परिक्रमा करके चले गए। बहुत जोर से शब्द हुआ पेड़ों के उखड़ने से, बिना आंधी के ही उखड़े, चारों तरफ में नंद बाबा दौड़ करके वो गायों के क्या खिड़क में थे, दौड़े वहां से आए। जो सुधा जी ने देखा जी घर में तो है नहीं, कहां गया, अब बिना आंधी के ये कहां से शब्द आया, उस शब्द की तरफ में दौड़ी, सब गोपियां हजारों लाखों दौड़ी, सब ब्रज के जितने सखा इत्यादि भी से बच्चे सहमे हुए थे। और कृष्ण अब इस समय तक रो नहीं गए थे, अब तक किंतु नंद बाबा को जब आते हुए देखा तो बड़े डकट डकट करके जोर से रब्बा बाबा बाबा रोने लगे। यह क्या हुआ, ये पेड़ कैसे गिरा? तो छोटे छोटे बच्चे से पूछा ये क्या हुआ, बाबा बाबा ये पेड़ से दो देवता निकल करके इसकी परिक्रमा किया और क्या क्या बोल करके तब फिर चले गए। तो उनको विश्वास नहीं हुआ ये क्या। आज यदि वो सीधे गिर के होते पेड़ तो न जाने क्या होता, ये सब बच्चे कुचल करके मर जाते। ये तो इस तरह से गिरे आकर के रोते हुए बेटे को अपने गोद में ले लिया और गोद में लेकर के अपने पॉकेट से गुड़ का लड्डू उसमें सौंफ और क्या क्या मसाला दिया हुआ कृष्ण के हाथों में दिया। कृष्ण तो रो रहे हिचकी मार रहे हैं खूब जोर से शांति में। धीरे 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 बंधन खोला। इस बंधन को खोलने के लिए सब सखाओं ने चेष्टा की किंतु बात्सल्य रस का बंधन वो लोग नहीं खोल सकते, बलदेव भी नहीं खोल सकते। बलदेव भी नहीं थे, पीछे से आए पुलिस इसे कौन बांधा, आज मैं उसे देख लूंगा। मधमंगल या श्री राम जी ने कान में कह दिया मैया ने बांधा, मैया का नाम सुप्त है वो भी। यह है बात्सल्य रस। तो क्या कर
गांठ सखा लोग को नहीं खोल पाए गांठ को,
बांस को दूसरे नहीं खोल सके। नंद बाबा आधा है ना, आधा वो है, इसलिए बात्सल्य गांठ नंद बाबा ने खो अमृत हो गए। कहते हैं बांधा किसने, कान में बोलते जी मैया, और फिर जो खोला किसने, आकर बाबा ने। बाबा बड़े प्रसन्न हुए और भीतर भीतर यशोदा इतनी कुर्बल है, इतनी निष्ठुर है, जीवन में हमने तो कभी देखा नहीं था कि ऐसे निष्ठुर क्यों हो गई। यशोदा माँ खड़ी है जरा दूर, निकट आने का साहस नहीं। आज यदि मर गया होता तो क्या होता, और कृष्ण रो रहा था, हमने तो इस उद्देश्य से बांधा नहीं था, ये क्या होने को क्या हो गया। ले डर के मारे नहीं आ रहे। नंद बाबा ने धीरे से क्रोध तो किया कि तो कुछ कहा, हाथ उठाया मारू तुम्हारी भैया को, हाथ पकड़ लिया कृष्ण ने। और फिर नंद बाबा ने दोनों बेटों को अपनी गोदी में ले लिए, कंधे पर चढ़ा लिया या गोदी में ले लिए और वहां ब्रह्मांड घाट में स्नान किया। तब तक बहुत समय हो चुका है, घर आए रसोई बनी नहीं कुछ नहीं, गायों का धारुष्ण कृष्ण को, धारुष्ण माने समझते हैं ना, गाय खड़ी है और दूध करके मुख में ही दूध रहे और कृष्ण पी रहे हैं, मिश्री उनको दे रहे हैं हाथ में, इस तरह से पेट भर उनको खिला दिया। और फिर राजभवन में पहुंचे, करते 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 शाम हो गई, रसोई नहीं बनी और सभी लोग बड़े दुखी हैं। जो यशोदा मैया काठ की मूर्ति हो गई है, आज हमने जो कृत्य किया, आज यदि कुछ हो गया होता तो क्या होता, रो भी नहीं रही है, सुख गया रोना भी। इधर नंद बाबा बैठे हैं कृष्ण और बलदेव को लेकर के, शाम हो गई और रात होने को उन्होंने उपानंद की पत्नी रोहिणी मैया और बूढ़ी बूढ़ी जो स्त्रियां थी वो गोपियां वहां पर पहुंची। अरे कृष्ण तुम भैया मैया रो रही है, चलो नहीं जाऊंगा, सोएगा कहां बाबा के साथ, खेलेगा किसके साथ, दाऊ भैया के साथ, किस तरह से जाने को राजी न हो। तो उपानंद की पत्नी आरोही मैया कहती है यदि ऐसा हो जाए अर्थात यदि वो मर जाए, और कृष्ण से रहा नहीं गया, बड़े जकर टकर से रो दिया और हाथ फैला दिया, मैया मैया मैया। और उपानंद की पत्नी ने उनको ले लिया। नंद बाबा भी रोने लगे, कृष्ण रोने लगे, बलदेव सब लोग रोने लगे। जसोदा मैया तो वहां पर रो नहीं पा रही थी। अब ये लेकर के उनकी गोदी में जब बैठा दिया तब अब ढकर ढकर के अब रोने लगते। सारी गोकुल की नगरिया सभी लोग रोने लगे, विरह में सभी मुक्त हो गए। ये बात संघर्ष, ऐसी ऐसी कृष्ण की लीलाएं होती है। आज यही पर समाप्त करता हूं। क्या बोलेगा फिर, रहने दो, समय हो गया है अभी। ये सब
कृष्ण जन्मोत्सव,
हाँ तुम बोले दो,
अभी कृष्ण जन्मोत्सव को ये कर दी आगे बढ़ा,
तुम बोले दो।
कृष्ण जन्म कथा।